कोशिश की कि जो भी हम काम करते हैं उसका हमारे लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इवन आवर प्रेजेंट लाइफ एंड पास्ट एंड फ्यूचर लाइफ्स में उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या प्रोसीजर है, कैसे ये इम्पैक्ट करता है। आज जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे जो असेंस ऑफ द होल लेक्चर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, न कर्मा लिप्यते नरे मंत्र का जो आखिर पार्ट है, और वो कहता है एक्शंस डू नॉट बाइंड द मैन, मतलब आप काम करें अच्छा हो बुरा हो तो भी आप अंदर से खुश रहें, रिजल्ट कैसा भी आए, आपकी वर्किंग में एफर्ट में कोई कमी ना हो, हार्ड वर्क करें, सब कुछ करें और कैसी भी सिचुएशन हो आप अंदर से खुश रहें, और न केवल सिर्फ खुश रहें इवन आप अपने फ्यूचर लाइफ के लिए खुशी भी बहुत सारा एक्यूमुलेट करते रहें। इस प्रोसीजर का नाम है कर्मयोग। तो इसको समझने के लिए ध्यान रखिएगा, कोई भी काम हम करते हैं तो दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो आज ए डूअर ऑफ द एक्शंस, कि डूअर का मतलब होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, मेरे कारण हो रहा है, जो कुछ है वो मेरा है, मैंने किया है, दैट्स वन टाइप ऑफ एक्शंस वी कैन डू, मोस्ट ऑफ पीपल वी डू दिस वे। पर जो दूसरा तरीका है एज एन एक्टर, एक्टर मतलब जो थिएटर्स में या मूवीज में एक्ट करते हैं, स्टेज में आप करते हैं, बिल्कुल रियल रोल करते हैं, राम सीता के बिना रो रहा है जंगल में, तो स्टेज पर जो राम का कैरेक्टर है वो बिल्कुल राम के तरह ही रोता है, हो सकता है राम से ज्यादा इमोशनल होकर रोता है, पर अंदर से वो बिल्कुल कूल एंड काम है, तभी वो राम से बेटर हो सकता है, रियल लाइफ में इतना ना रोया होगा जितना एक्टर आपके सामने रखता है। बट डोंट मिस अंडरस्टैंड कि जो एक्टर स्टेज पर या मूवीज में आप देखते हैं वो ड्रामा करता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा रोता है करता है, आप कहते हैं ड्रामा करता है, नेवर। कोई भी एक्टर जब स्टेज में या मूवीज में एक्ट करता है वो अगर ड्रामा करने लगे तो आप स्टेज छोड़ के भाग जाएंगे, आप देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि बड़ा आर्टिफिशियल लगेगा, बड़ा बोरिंग लगेगा। आप अगर मूवीज को एंजॉय करते हो या कोई थिएटर को एंजॉय करते हो इसीलिए कि आपको लगता है, आपको लगता नहीं, आप डूब जाते हो जब एक्टर किसी रोमियो जूलियट का रोल करे या राम और सीता का रोल करे, तो आप उसमें डूब जाते हो। डूब इसीलिए जाते हो कि वो एक्टर ऐसा एक्ट करता है आपको समझ में, आप भूल जाते हो कि ये रियल है कि अनरियल है, ऐसा क्यों करता है। ऐसा अंदर अगर आपकी कुछ ना हो, ऊपर से आप ड्रामा कर रहे हो, ये फीलिंग नहीं आएगी। कोई भी एक्टर जब ट्रेनिंग लेता है एक्टिंग स्कूल में, उसका जो पहला लेसन होता है, जब भी आप किसी कैरेक्टर को करते हो, मान लीजिए आपको राम को रोल मिला या सीता का रोल मिला या रोमियो का या जूलियट का किसी का भी रोल आपको मिला, का विलियन का रोल मिला, हीरो का रोल मिला, जो भी रोल मिला, जैसे ही आप उस कैरेक्टर को निभाने लगते हो आप वही हो, आप राम हो, आप कोई श्याम, आप विकास आकाश नहीं हो। अगर उसमें 1% की भी कमी आई, आपको बीच में 1 सेकंड के लिए भी फील आया कि मैं विकास गुप्ता हूं, आकाश शर्मा हूं, मेरे फैमिली ये हैं, तो आप एक्ट से हट गए, अब वो रोना, वो हंसना, वो इमोशन सब नकली होगा, ड्रामा होगा। तो यू हैव टू डू इट विद द फीलिंग, प्रॉपर फीलिंग, तभी रियलिटी सामने आता है। पर एक चीज जो फर्क है रोमियो जूलियट और राम सीता या कोई भी एक्ट करते हैं और उसको करने वाले एक्टर्स में, फर्क यह है कि वो लोग रियल लाइफ में अटैच्ड हैं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो भोगते हैं, पर उनका रोल करने वाला जो स्टेज पे करता है वो अंदर से कूल एंड काम है, सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभाता है, उतने ही इमोशन के साथ वो भी करता है। उसकी आंखों के आंसू जेन्युइन होते हैं। कोई एक्टर जब स्टेज में रोल करता है या मूवी में, वो दवाई लगा के रोता नहीं है। दवाई लगाने वाले एक्टर को एक्टर किया ही नहीं जा सकता, वो तो बड़ा अनाड़ी एक्टर है। अंदर कूल एंड काम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको अंदर से। हम जब नॉर्मल लाइफ में भी इस ट्रेनिंग को, इस आर्ट को प्रैक्टिस करने लग जाएं, तो फिर एक दूसरा लाइफ बन जाएगा, वो योग बन जाएगा, वही कर्म योग में कन्वर्ट हो जाएगा। हर वो सिंगल इंसान, पुरुष या नारी, वो योगी या योगी बन जाएंगे, भक्त बन जाएंगे। पर प्रॉब्लम है कि हम रियल लाइफ के काम से सिर्फ अटैच नहीं होते हैं। एक्टर्स जो मूवीज में रोल करते हैं, बाद में वो इतने ज्यादा चिपक जाते हैं, बहुत सारे एक्टर वो रियल लाइफ में भी वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। हमारा बिल्कुल अपोजिट टाइप का डायरेक्शन में गाड़ी चलती है। हम ड्रामा को भी रियल समझने लग जाते हैं। शास्त्र कहता है आप रियलिटी को भी ऐसे जियो जैसे कोई एक्टर जीता है, पर हम एक्ट को भी ऐसे जीते हैं जैसे कोई रियल लाइफ में हो रहा हो। और उसका रिजल्ट क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जिसको आप कहते हो ये मेरा नेचर है, ये मेरे बच्चे का ऐसा ही नेचर है, मेरी वाइफ का नेचर है, मेरा नेचर है, उसका नेचर है, क्या करें? कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक ह्यूमन नेचर, इट्स ऑल अबाउट फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस्ड बिहेवियर। लंबे समय से एक ही टाइप के बिहेवियर को रिपीट करते 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 वो आदत इतनी स्ट्रांग हो जाता है, इट बिकम सेकेंड नेचर। धीरे धीरे वो सेकेंड नेचर हमारा नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो लगता है भाई नेचर तो बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकता, ऐसा नहीं कि इट्स वेरी इंपॉसिबल। ये इंपॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट, इसीलिए डिफिकल्ट जरूर है। क्यों? अगर आपने 20 साल में कोई प्रैक्टिस को, कोई चीज आपने बिहेवियरल प्रैक्टिस किया है, जिसके बाद कि आपको आप लगता है कि मुश्किल है चेंज कर पाना, आपकी गुस्सा हो, आपके प्यार हो, आपकी चिड़चिड़ापन हो, आपको ज्यादा खाना हो, कम खाना हो, एक प्रॉपर एंगल से देखना हो, मुंह से गंदी गालियां निकलना हो, हर बात पर कुछ निकलना हो, वो 5 साल 10 साल 20 साल की जो प्रैक्टिस बिकम्स पार्ट ऑफ योर नेचर, तो आपको उतने ही मेहनत करनी पड़ेगी उसको इरेज करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते क्या करें, हमें पता है कि मेरी कमियां है, छूटता नहीं है। प्रॉब्लम है कि छूटने के लिए जो एफर्ट हम करते हैं वो 2 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, और एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो छूट जाए जो हमने 10 साल में 15 साल में कल्टीवेट किया है। तो इसलिए कोई चीज जब बार बार हम करते हैं, सुनते हैं, वो हमारे नेचर का पार्ट बन जाता है। इसका सबसे बढ़िया और सबसे यूनिवर्सियल एग्जाम्पल है, हजारों सालों से पूरे दुनिया में महिलाओं को यह सिखाया गया, वुमेन हैव बीन टॉट दैट, कि दे आर इन्फीरियर टू मैन, पुरुषों से कमजोर है, कमतर है, हजारों सालों से। और उसका रिजल्ट, हजारों सालों से महिलाएं मानती हैं, मानती थी, और आज भी मोस्ट ऑफ लेडीज ये मानती हैं कि ये पुरुषों से कमतर हैं। पर जब भी एक्सपेरिमेंट हुआ साइंस में, टेक्नोलॉजी में, पावर में, किसी की फोन बज रहा है, उसको स्विच अप रखिए या साइलेंट में रखिए या बाहर जाकर के बात करिए। इवन आर्मी में भी आजकल आप देखेंगे लेडीज सोल्जर बनते, इवन फॉरवर्ड रेंज में भी रहने वाले जो दुश्मनों से लड़ने के लिए भी रहते हैं, आज स्पेस में भी आपको मिलते हैं, पॉलिटिक्स में हायर पोजीशन पर है, तो जिन लेडीज ने अपने आप को समझा कि मैं इन्फीरियर नहीं हूं, अपने नेचर को चेंज किया और ऐसा एक नेचर बनाया, डोमिनेटिंग नेचर बनाया, पावरफुल समझा, वो पावरफुल बने। पर हजारों सालों से मोस्ट ऑफ लेडीज थिंक दैट इवन टुडे दे थिंक दैट दे आर इन्फीरियर देन मैन। ये जो कंस्टेंट प्रैक्टिस है या उन पर थोपा गया और वो मानते गए, उसका रिजल्ट है। पर आप एक मजेदार बात बताएं, भारत में मैंने पहले भी बहुत बार आपको बताया है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में एक कम्युनिटी है, वो दो कम्युनिटी वहां होते हैं, खासी और गोरा, दो ट्राइबल्स होते हैं मेघालय में। तो उसमें जो खासी कम्युनिटी है वो मातृ प्रधान है, मतलब लेडीज यहां डोमिनेट करते हैं, पुरुष शादी करके लड़की के घर आता है, घर का जो भी बाहर का काम है, नौकरी करना, खेतीबाड़ी करना, बिजनेस करना, पैसा कमाना, जो कि जनरली बाकी सोसाइटी में पुरुष लोग करते हैं, वहां सब स्त्रियां करती हैं। बच्चों को पैदा करने का काम तो ईश्वर की कृपा सिर्फ महिलाओं के पास है, पर उनको पालना पोसना, घर में रहना, खाना बनाना, घर साफ करना, कपड़े साफ करना पुरुषों का काम है। वहां स्त्रियां घर की मुखिया होते हैं, पुरुष उनके हिसाब से चलते हैं। वहां पुरुष उतना ही कमजोर है जितना बाकी सोसाइटी में स्त्री कमजोर है घर में। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, ये माइंड का गेम है जिसे हम नेचर कहते हैं। आप अपने घर में पैदा होते ही अपनी लड़की को बोलिए तू बहुत ब्रेव है, हीरो है, स्ट्रांग है, और अपने लड़के को पैदा होते ही बोलिए तू बहुत सॉफ्ट है, बहुत बहुत ये है, तू बाहर मत निकले, कोई तुझे छेड़ लेगा, छेड़ लेगी। आप देखेंगे 15-18 साल का लड़का किसी भी नॉर्मल लड़की से ज्यादा डरपोक और भीरू बनेगा, जैसे लड़कियां होती हैं, और लड़की आपको देखेंगे किसी भी पहलवान से ज्यादा ताकतवर मिला। इट्स ऑल अबाउट कंस्टेंटली आप उसके विस्परिंग करते रहिए, जो आप करते हैं उसके अपोजिट करिए, जो आप करते हैं रेगुलर वे में ठीक अपोजिट करिए। लड़की को बोलिए पैदा इसी की तू स्ट्रांग है, तू स्ट्रांग है, आप देखेंगे लड़की उसकी भाई से ज्यादा स्ट्रांगर बनेगी, भाई उससे ज्यादा सॉफ्ट और मासूम और नाजुक बनेगा। इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग गेम, माइंड गेम। हमारा जो नेचर है ये हमारे हाथ में है, ये और किसी के हाथ में नहीं है। हमारे में कोई अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, हमें पता है, हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये मेरा अपना कल्टीवेशन है। अगर मेरा है तो मैं भी उसको रेक्टिफाई कर सकता हूं। ये जिस दिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब तक नहा ले तब तक हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। गीता का ये प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। बहुत इसको मिसअंडरस्टैंड भी किया जाता है, अलग अलग तरीके से लोग समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हारे काम में ही अधिकार है, यू हैव ऑल द राइट टू डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, पर तुम्हारे उसके फल में कोई अधिकार नहीं है। सो इवन डोंट ट्राई टू बी टू टेक द ओनरशिप ऑफ योर एक्शंस एंड डोंट बी अटैच्ड विथ योर एक्शन। बात लोगों को लगता है कि ये कैसे होगा, काम करने में मेरा अधिकार है और फलों में किसी दूसरे का अधिकार है। फलों में किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, ये बड़ा नेचुरल है, ये लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से है। आप जो चाहे कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। आपको अच्छा बनना है, कोई नहीं रोक सकता। बुरा बनना है, कोई नहीं रोक सकता। दूसरे सिर्फ आपको हेल्प करेंगे। पिछली बार आपने सुना ना, उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। गीता का वो श्लोक सुना, मैं ही अपना शत्रु हूं, मैं ही अपना मित्र हूं, मैं खुद को बचा सकता हूं, नष्ट भी कर सकता हूं। मैं अगर बिगड़ा हुआ हूं, सोसाइटी जिसने भी मुझे ये बनाया उसने सिर्फ हेल्प किया है, किया तो मैं नहीं। अगर अच्छा हूं, मैंने ही किया, दूसरों ने सिर्फ हेल्प किया है। काम करने के लिए मैं आजाद हूं, मैं खाऊं न खाऊं मेरी मर्जी, मैं मिर्च वाला खाऊं, मीठा वाला खाऊं, खट्टा वाला खाऊं मेरी मर्जी, पर जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारे इच्छा से नहीं होगा। मैं कहूंगा मैं आधा किलो मिर्च खाऊंगा और मेरे मुंह में रसगुल्ला का स्वाद आएगा, होगा नहीं। फिर जो होगा इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काम हम क्या करें कोई हमें रोक नहीं सकता। मतलब हम चाहें कोई हमें रोके तभी रोकता है। अगर मैं चाहूं कि मेरी पत्नी की बात मैं सुनूं तो मैं सुनूंगा, या कोई पति की बात सुने तो वो सुने। अगर वो सोचे कि चाहे कि मैं नहीं सुनना है मुझे, तो आप क्या करेंगे? लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, प्यार कर दो, जो करना है करो, मुझे नहीं सुनना, फिर आप क्या करेंगे? लोग करते भी हैं, तो आपकी मर्जी है। पर किसी भी कर्म का जो फल होगा वो फिर मेरे इच्छा से नहीं होगा। कर्म मेरे इच्छा से हो सकता है। मैं चाहूं कि मैं सोऊं और सब कुछ सही हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना। मैं गलत काम करूं सही रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है रिजल्ट बनाने में। देवियों सज्जनों, जो बेसिक पॉइंट वो समझिए, रिजल्ट का हमारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमारा रिलेशनशिप हमारे काम के साथ है, और रिजल्ट का रिलेशनशिप काम के साथ है, मेरे साथ नहीं है। वो रिजल्ट काम का है, मेरा नहीं है। आप एक आम का पेड़ लगाते हैं बैकयार्ड में, उसमें आम फलता है, हम कहते हैं हमारा है, ठीक है, कहने के लिए कहना रहता है, पर आम हमारा नहीं होता है। आम आम के पेड़ का होता है। प्रूफ क्या है? हमारा होता तो हमारे जैसा होता। आम अगर खट्टा है, क्यों खट्टा है? क्योंकि आम के पेड़ का बीज ऐसे ही था। आम अगर बढ़िया है, हेल्दी है, क्योंकि आम के पेड़ में भरपूर न्यूट्रिशन है। आम अगर टेढ़ा मेढ़ा है, सूखा है, क्योंकि आम के पेड़ कमजोर है। आम का पेड़ जैसा होगा उस आम उसी तरह का होगा। आम तुम्हारे मर्जी से नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारे से आम का कोई कनेक्शन नहीं है, सिवाय कि तुम कंज्यूमर हो आम का। आम तो वैसे ही होगा जैसा आम का पेड़ होगा, उसका रूट होगा, उसका बीज होगा, जिस तरह के उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसका पेड़ जिस टाइप का होगा ऐसा ही बनेगा। हमारी मर्जी से आम नहीं चलता, आम पेड़ के हिसाब से चलता है। तो अगर मुझे रिजल्ट को ठीक करना है तो क्या रास्ता है? मुझे अगर मीठा आम और बड़े बड़े आम चाहिए तो मैं आम से दुश्मनी करके या दोस्ती करके कोई फायदा नहीं है। जो करना है पेड़ के साथ करो, बढ़िया बीज लाओ, मीठे वाले आम का बीज लाओ, अपने साइल ठीक रखो, फर्टिलाइजर ठीक रखो, ऑर्गेनिक करो, पेड़ का ध्यान रखो, फिर जो आम आएगा वो पेड़ के हिसाब से बनेगा। इसीलिए गीता में कृष्ण कहते हैं फल पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। राइट का मतलब होता है अधिकार, मेरी मर्जी में जैसे बनाऊं और अधिकार तब होता है ना जब आपकी कंट्रोल में हो। अब तो बच्चे भी कंट्रोल में नहीं होते हैं, अधिकार नहीं होते, तो आप फल को क्या कहोगे। इसीलिए प्रॉब्लम हमारे कहां होता है, हम सोचते हैं फल पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने किया है। कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम्हारे कर्म पर अधिकार है, जैसे मर्जी काम करो, कोई नहीं रोक सकता टोक सकता तुम्हें। अगर किसी का डर नहीं तो कुछ भी करेगा, तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी ट्रेनिंग है, अपब्रिंगिंग है, समझ है, तुम ऐसे ही करोगे, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कर्म और फल दो दूसरे दूसरे चीज हैं। फल किसी को फ्रस्ट्रेटेड नहीं करता, पर हमें लगता है देखो मैं 10 साल से बिजनेस के लिए कोशिश कर रहा हूं पर फेल हो रहा हूं, मेरे कंपनी में मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स है, ठीक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेरे पत्नी या पति के साथ मैं बड़े कोशिश कर रहा हूं कर रही हूं पर जम नहीं रहा है, रिलेशनशिप में बड़े मुश्किल आते हैं, बच्चों के लिए इतना एफर्ट्स कर लेते हैं बच्चे लाइन पर नहीं आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, लाइफ में जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। आप या हम इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं है कि काम हमें फ्रस्ट्रेटेड करता है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट ठीक नहीं मिल रहा इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है, नहीं, इसीलिए कि काम करते समय जो एक्सपेक्टेशंस हम पाल रखें अंदर, या जो एटीट्यूड बना रखें, वो हमें फ्रस्ट्रेटेड करता है। इन दोनों चीजों को ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है, इट्स ए लाइफ चेंजर टॉपिक, है ना। काम खराब होता है, गलत होता है, लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हमारे सुख या दुख को छीनने वाले नहीं होते हैं। सुख या दुख का फर्क पड़ता है मेरे अपने अंदर के प्रॉब्लम से, वो माइंड से, वो एक्सपेक्टेशन से, वो एटीट्यूड से। हम कोई भी काम, अच्छे से अच्छे काम को भी दो तरीके से कर सकते हैं, विथ ए गुड एटीट्यूड और ए बैड एटीट्यूड। आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, हजारों एटीट्यूड होगा, पिछले बार हम डिस्कस कर रहे थे ना, लोगों को लगता है भाई 10 लोगों ने अच्छा काम किया, सबको अलग अलग रिजल्ट मिलता है, इवन अच्छा काम करने के बाद भी कोई नर्क जाता है और कोई स्वर्ग जाता है, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ देखा कि 10 ने अच्छा काम किया, पर अंदर बहुत कुछ फर्क चल रहा है, इंटेंशन में फर्क है, एटीट्यूड में फर्क है, एक्सपेक्टेशन में फर्क है, वो पब्लिक को नहीं दिखता, पर ईश्वर को दिखता है, मुझे दिखता है, मतलब हम खुद को दिखता है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जिसको हेल्प किया वो बाद में उसको रीपे करे, जिंदगी भर मेरा एहसान माने, नंबर 2, कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत लोग मुझे हेल्प करते हैं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने हेल्प किया, मैंने इसको कर दिया, किया और फॉरगेट, भूल गया, मैं बड़े काइंड हार्टेड हूं बाय नेचर, जो भी हेल्प मांगता है मैं करता हूं, आई डोंट रिमेंबर मैंने किस किस का हेल्प किया, हु केयर्स, बस हेल्प किया बात खत्म, बेटे नमस्ते करने की भी जरूरत नहीं, तू अपना काम कर, इवन डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि मैंने कुछ किया है, ये भी एक एटीट्यूड है। तो अलग अलग एटीट्यूड से हेल्प करने के बाद भी मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं नॉर्मल हूं, क्यों, इसीलिए नहीं कि आपने हेल्प किया, मैं ये एग्जांपल नहीं दे रहा हूं कि आपने बुरा क्या किया, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं आप अच्छा करके भी दुखी हैं, क्यों दुखी है, हेल्प किया ढंग से थैंक्स तक भी नहीं बोला, थैंक्स बोला पर बड़ा ऊपरी ऊपरी सुपरफिशियल बोला, आज मैं बात अपनी वाइफ को भी शेयर नहीं किया क्योंकि वो बोले कि क्या छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठे हो, पर रात को नींद नहीं आई, दुनिया कितना सेल्फिश है भाई, हेल्प भी करो लोग ढंग से थैंक्स भी नहीं बोलते। अच्छा काम किया सर, पर सारा दुख पाल के बैठा हूं, है ना। इसीलिए काम आपको सुख या दुख नहीं देता है देवियों सज्जनों, इससे आपके एटीट्यूड देता है। और आपने हेल्प किया इस एटीट्यूड के साथ कि दुनिया में मुझे भी बहुत लोग हेल्प करते हैं, मेरे से तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि तुमने ठीक से थैंक्स बोला नहीं बोला, मैंने भी किया भूल गया, उसका शकल कैसा था मैंने देखा नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन क्या था मैंने नोट नहीं किया, उसने मुंह में क्या बोला आई डिडंट रिकॉग्नाइज इट, मेरा ड्यूटी था मुझे अच्छा लगा हेल्प करना मैंने किया भूल गया। आप बड़े लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा सा फील कर रहे हैं, आपकी 24 घंटे बड़ा अच्छा जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है कि आप अंदर से खुश हैं, क्यों खुश हैं, आपने कुछ अच्छा किया, दैट्स इट। इसीलिए हमारा काम या काम का रिजल्ट हमें हमें इंपैक्ट नहीं करता, इंपैक्ट करता है कि उसको करने के पीछे हम किस एटीट्यूड से कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन लेकर कर रहे हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो प्रॉब्लम्स हैं, एटीट्यूड गलत है तो गलत रिजल्ट होगा, अच्छा एटीट्यूड हो तो अच्छा रिजल्ट होगा। कोई भी काम हम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, नेचुरली हर व्यक्ति पैसे कमाने के लिए काम करता है, पर वहां भी दुख प्रॉब्लम्स हर ऑफिस में होता है, हर जगह होता है, कहीं भी काम करो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहते ही रहते हैं। पर काम करने वाले अलग अलग तरह के लाइफ जीते, कोई उन्हीं सिचुएशन में बहुत मजे में है और कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहा है क्योंकि उसकी बॉस बड़ा खड़ूश है, बाकी उसकी कॉलीग्स बड़े सेल्फिश हैं, प्रोजेक्ट चुरा लेते हैं अपने नाम पर कर लेते हैं, दुखी है, कंप्लेंट करता रहता है बाकी लोगों को, प्रॉब्लम नहीं, इट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ एटीट्यूड। शास्त्र कहता है कि काम जब करो एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखो। एक अच्छी सी एक रियल स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। एक भारत में एक शहर में एक कुछ यंगस्टर्स, एक ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स ने एक ग्रुप बनाया वॉलंटियरिंग करने का, अच्छा काम करने का, सोशल सर्विस करने का। पढ़े लिखे लोग थे, यंग थे, कॉलेज गोइंग थे जस्ट, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया एनजीओ टाइप का, और उन्होंने प्रोजेक्ट लिया, सर्वे किया कि क्या हम काम कर सकते हैं। तो देखा शहर में एक स्लम एरिया था, तो स्लम में बहुत गंदगी थी, बहुत बार वहां बहुत बीमारी होती थी, हर तरह की बीमारियां फैली होती थी। तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत गंदगी बहुत है, तो ट्रास भी इधर उधर पड़े हुए होते हैं, रोड गंदे हैं, नाले गंदे हैं, घरों लोगों के घर वगैरह कपड़े वगैरह गंदे हैं, कोई सेंस नहीं है कि वो हाइजीन का, वो क्लीनलीनेस का कोई सेंस नहीं है। तो उन्होंने वो स्लम एरिया का प्रोजेक्ट लिया कि हम इसको दो काम करेंगे, हम इस एरिया को साफ करेंगे और लोगों को एजुकेट करेंगे। और वो गए, शुरू के एक दो हफ्ते रोज उनको दो तीन घंटे जाना पड़ा क्योंकि उनको वो रोड साफ करना था, नालियां साफ करनी थी, बच्चों को उनके बच्चों को बुला बुला के जो कम्युनिटी हैंडपाइप होता है वहां खड़ा करके उनको नहलाया, साबुन फाबुन देके, घरों को बोला साफ करो, ट्रास बिन लगाया अलग अलग जगह कि ट्रास यहां डालो रोड पर मत डालो, ऐसा उनको रोज कंटिन्यूअसली 15 दिन तक जो भी दो तीन घंटे टाइम निकाल के करना पड़ा क्योंकि शुरू में कोई काम आप करते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग दिया उनको, भाई अब आगे से ध्यान रखो, ये करने से ये फायदा होता है, आपकी बीमारी कम होगी, आपको अच्छा फीलिंग होगा, आपके रोड साफ रहेगा, अच्छे लोग भी आने जाने लगेंगे। तो वो ट्रेनिंग करते थे, और पर अब हफ्ते में दो दिन तीन दिन वो आते थे, वो ट्रास वगैरह को ले जाते थे, रोड साफ कर जाते थे, नालियां साफ कर जाते थे, बच्चों को सिखा करके घर वालों को सिखा कर जाते थे कि आपको साफ रहने की आदत डालना चाहिए। ऐसे उन्होंने 4-5 महीने तक उस वहां काम किया और उनको लगा कि लोग ऑलरेडी एजुकेटेड हो चुके हैं, उनको आदत पड़ चुकी होगी। फिर उनको दूसरे स्लम में दूसरे जगह पर काम शुरू करना था, तो उन्होंने 1 महीने के लिए शिफ्ट हो गए, दूसरे स्लम में काम करना शुरू किया। फॉलो अप के लिए 1 महीने के बाद जब आए तो रोड उतनी ही गंदा था और नालियों में उतनी ही गंदगी थी और बच्चे वैसे ही गंदे थे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे ही 1 महीने के बाद वो स्लम कम्युनिटी में आए तो वहां के जो लोग थे, लेडीज थे, जेंट्स थे, वो बाहर आकर बोले, 1 महीने तक तुम लोग सब कहां थे भाई? यंगस्टर को बहुत बुरा फील हुआ, कमाल है, ये तो हमें नौकर समझ रहे हैं, ये सोचते यही आएंगे साफ करेंगे, हम तो इनको एजुकेट करना चाहते थे, इनको हेल्प करना चाहते थे, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वही गंदगी फेंक रहे हैं, सब कर रहे हैं। और सोच रहे, महीने भर तक उन्होंने नहीं किया, सोचा कि वही आकर करेंगे। फ्रस्ट्रेशन हुआ, उनको लगा कि दुनिया बेकार है, कोई फायदा नहीं करके, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। तो गए, जो भी उनका जो टीचर था जिससे वो इंस्पिरेशन लेकर के काम करते थे, प्रोफेसर होगा जो भी होगा, उनके पास गए तो बोला, देखिए सर, कोई फायदा नहीं है किसी का भला करके, उल्टा लोग आपको नौकर समझते हैं, चाकर समझते हैं, ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। प्रोफेसर ने बोला, बेटे ऐसा है कि काम फ्रस्ट्रेटिंग नहीं था, लोग भी नहीं थे। अगर लोग खराब होते, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने वाले होते, काम अगर फ्रस्ट्रेटिंग होता, तो शुरू के जो तुमने 6 महीने काम किया, अब तो एंजॉय कर रहे थे, वही लोग थे, वही गंदगी थी, वही सब कुछ था, पर आप एंजॉय कर रहे थे, बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे, बिल्कुल जोश के साथ काम कर रहे थे, तो तब तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ इतनी गंदगी देख करके, ऐसे गंदे लोग को देख करके, तब तो फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। 6 महीने के बाद, 1 महीने के गैप के बाद जाते हो, उससे बेटर था, पहले 100% गंदगी थी, अब 80% था, पर अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इसीलिए नहीं कि वो गंदगी करने वाले लोग आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, सोसाइटी के कारण आप फ्रस्ट्रेटेड हो, या जो गंदगी फैलाई जा रही है उससे फ्रस्ट्रेटेड है, इसीलिए कि आपके एटीट्यूड में चेंज आ गया। वो चेंज ने क्या था, जो शुरू में आप काम करने गए थे, आपका उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, आप गए थे अपनी मर्जी से, हमें कुछ करना है, अच्छा करना है। धीरे धीरे आपने उस अच्छे काम में भी एक्सपेक्टेशन अपने अंदर कल्टीवेट शुरू किया, अब ये लोग अच्छे बनना चाहिए, इनको साफ रहना चाहिए, इन लोगों को खुद करना चाहिए, एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे कल्टीवेट होने लगा। अब आपको फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम काम में नहीं है, सोसाइटी में नहीं है, सोसाइटी कल भी वैसी थी, आज भी वैसी थी, वर्क कल्चर वैसा सबके लिए है, प्रॉब्लम है कि हमारी एटीट्यूड चेंज होते ही काम में मजा आना बंद हो जाता है, मजा आना बंद हो जाते ही फिर हम इरिटेट होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, संस्था में बुराइयां दिखने लगती है, लोगों में बुराइयां दिखने लगती है, बाकी दुनिया में बुराई दिखने लगती है। पर शास्त्र कहता है नहीं, ये हमारा मेंटल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन का है, ये प्रॉब्लम एटीट्यूड का है, और कुछ नहीं है। आप एटीट्यूड चेंज कर लीजिए, गंदा से गंदा काम भी वर्शिप बन जाएगा, पूजा बन जाएगा, योग बन जाएगा, और एटीट्यूड चेंज कर लीजिए, अच्छा सा अच्छा काम भी गंदा हो जाएगा, आपकी लाइफ को मिजरेबल बना देगा, आप लोगों के भला करते चलिए, आपकी रात की नींद खराब होती जाएगी, क्योंकि एटीट्यूड खराब है, नेगेटिव आपने बना रखा है। एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स वो बाहरी दुनिया से हम करते हैं, और जो काम करने का जो मजा है या दुख है वो हमारे अंदर होता है। बाहर वालों के पास आपके पास कोई ऐसा रिमोट नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है कि बाहर चीजों को आप कंट्रोल कर सके। आप ये नहीं कर सकते कि सारी दुनिया को मैं चेंज कर दूंगा, मैं अपने नेबरहुड को चेंज करूंगा तभी सुख मिलेगा, आप कर ही नहीं सकते। आपके अंडर कोई नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं करने वाला। अगर आप उन्हीं नेबरहुड के साथ रहना चाहते हैं, उसी वर्क कल्चर में रहना मजबूरी है, क्योंकि वर्क प्लेस में जहां आप काम करते हैं वहां सैकड़ों लोग काम करते हैं। आप उनको चेंज, आप अपने बॉस को कैसे चेंज करोगे, अपने कलीग्स को क्या चेंज करोगे? आप कोई साधु महात्मा को तो कोई सुनता नहीं, तो आपकी कौन सुनने वाला? तो रास्ता क्या है? अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज करो, एटीट्यूड को चेंज करो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे कंट्रोल में है, ये तुम्हारे इनसाइड है, तुम जो बदल सकते हो खुद को, दुनिया को नहीं। और अगर दुनिया को बदलने की कोशिश करोगे उन बच्चों के तरह कि लोग हमारे तरह बन जाएं, तो फिर एंग्जाइटी बढ़ने लगेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगेगा, डिसअपॉइंटमेंट्स होने लगेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन नहीं होने वाला, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अपने सेकेंड सेशन में आपने सुना था, कोई भी काम आप करते हैं उसकी रिजल्ट क्या मिलेगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, 5 फैक्टर्स याद रखिए, और वो सब एक्सटर्नल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप गाड़ी सही चला सकते हैं, आपने ड्राइविंग ट्रेनिंग ले रखी है कि आप गाड़ी बिल्कुल रूल से चलाते हैं, पर ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलाएंगे कि क्यों मैं, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके गाड़ी चलाता हूं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ये अगर एक्सपेक्टेशन आपके अंदर है तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। इसका मतलब है कि आपको लगता है बाकियों की जिम्मेदारी है कि वो एक्सीडेंट न कराएं, और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको यह भी ध्यान रखना है, आप लेन में तो चलो, पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि सामने वाले कैसे गाड़ी चलाते हैं, उनका भी ध्यान रखो। कोई फोन में बात करके चला रहा होगा, कोई शराब पी के चला रहा होगा, कोई टेक्स्ट करके चला रहा होगा, कोई जॉय राइड कर रहा होगा, कुछ भी कर सकता है वो आपके तो रिजल्ट आपके कंट्रोल में हो ही नहीं सकता। इसीलिए एक्सपेक्टेशन दूसरों से करना बंद कर दे तो कर्म योग बन जाता है, और अच्छे से अच्छे काम करे, पर अगर बहुत ज्यादा एटीट्यूड रख के करे तो फिर वो मिजरेबल बन जाता है। सो इसीलिए एक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज द एटीट्यूड इन द वर्क विच इज द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि काम जो है वो एक्सटर्नल होता है, दूसरे फैक्टर से जुड़ा होता है, और एटीट्यूड इंटरनल है जो मेरे अंदर है, मैं एटीट्यूड को चेंज कर सकता हूं। ये जरूरी है कि हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, न कि दूसरों को चेंज करने की कोशिश करें। यहीं से शुरू होता है कर्मयोग की थ्योरी। कर्मयोग या योगी मुनि भक्त तपस्वी जो भी अलग अलग पाथ से जाएं, वो कोई हमसे अलग नहीं होते हैं। कपड़े बदलने से तो कोई अलग होता ही नहीं है, वो तो आडंबर है, वो तो शोपीस है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आउटफिट पहन रखा हो तो वो नॉर्मल आदमी है, और एक कोई पर्टिकुलर भगवा कपड़े पहना वो पहनाए तो वो बड़ा महात्मा, ऐसा नहीं होता है। वो तो होता है हमारे एटीट्यूड से। योगी भी खाना खाता है, आप भी खाना खाते हैं, फर्क होता है खाना खाते समय आपका रिएक्शन क्या बन रहा है, उनकी रिएक्शन क्या बन रहा है। दोनों के रिएक्शन से, एटीट्यूड से ये फर्क होता है कि कौन योगी है और कौन आम आदमी है। और वही जो माइंडसेट है, आप वो सब कुछ करते हुए भी योगी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है, और वही आपको नॉर्मल इंसान बना देता है, जानवर बना देता है, राक्षस बना देता है, काम एक ही करते हैं। वेज नॉन वेज की फाइटिंग में वो अलग टॉपिक है डिस्कस करने का, पर उसमें एक लॉजिक जो देते हैं मैं उस पर बात करने के लिए कोशिश करता हूं। कहते हैं देखो नॉन वेज खाने से लोग हिंसक हो जाते हैं और वेज खाने से कम हिंसा होती है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा जाता है। वेजिटेरियन भी उतने ही अग्रेसिव दिखते हैं, उतने ही बेईमानी करते हुए मिलते हैं, उतने ही डिसऑनेस्ट मिलते हैं जितना नॉन वेज वाला होता है। केवल खाना बदल देने से हमारा चरित्र नहीं बदलता, वेजिटेरियन होने का अपना लॉजिक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नॉन वेज होने का अपना नुकसान है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर चरित्र बदलता है ये डाउटफुल है, क्योंकि हमने वेजिटेरियनों को भी लोगों को कत्ल करते हुए देखा है, नॉन वेज वालों को बड़े शांत लोगों को हेल्प करते हुए देखा है। क्यों? मेरा कहने का भाव है कि जब तक आपकी स्टेट ऑफ माइंड में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, आपके मन में कोई बदलाव नहीं आया है, तो आप अच्छे से अच्छे काम को भी, वेजिटेरियन जैसे अच्छा फूड को भी आप स्पॉइल कर देते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपके एटीट्यूड में चेंज आए टू बी ए स्पिरिचुअल पर्सन। नंबर टू, अच्छे काम भी जहरीले हो सकते हैं। मैं आज बुरे काम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ अच्छे काम की ही बात कर रहा हूं। कर्म योग बुरे काम से कोई लेन देन है ही नहीं है, वो तो उससे ऊपर उठ चुका है। चोरी करना, बेईमानी करना, हत्या करना, लोगों को परेशान करना, ये तो योगी के स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर का कोई लेन देन है। अच्छे कामों में भी जो फर्क होता है वो जानने की है। अच्छा काम का एक साइड इफेक्ट है अब बड़ा डेंजरियस है, क्योंकि वो ईगो पैदा करता है। आप बहुत पढ़ लिख जाएं, ज्ञानी बन गए, पर बिगड़े हुए भी बन सकते हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बिगड़े हुए मिलते हैं। क्यों? ईगो बहुत बढ़ गया, पैसा बहुत आ जाए, बहुत सुंदर रूप होता है, पॉलिटिकल पावर आ जाए, कोई भी, बहुत आप लोगों की हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करने लग गए, अगर आपने अपने एटीट्यूड के बारे में अवेयरनेस नहीं बना के रखा, तो पता चला कि 2 साल 5 साल में अच्छा काम करते करते आप तो जानवरों से बदतर बिहेव करते हैं, लोगों से, लोगों को गंदा समझते हैं, छोटा समझते हैं। देखो मैं कितना महान हूं, कितने लोगों का भला करता हूं, कितने एनजीओ चलाता हूं, कितने लोगों के घर बनाया, कितने लोगों को मदद किया, ये नहीं करते पापी हैं, वो नहीं करते वो हैं। छोटी कहानी करके आज के लिए समाप्त करूंगा, टाइम हो चुका है, नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा इसको, इसके बड़े सुंदर शेख। एक कहानी है, एक संत एक बार कहीं जा रहे थे, घरों घरों में प्रवचन कर रहे थे, तो एक दिन साधु बाबा जी थे, तो एक घर वाले ने बोला कि महाराज मेरा बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, 15-17 साल का बच्चा है, आवारागर्दी करता है, घूमता फिरता है, कुछ मानता नहीं, सुनता नहीं, माँ बाप की रेस्पेक्ट नहीं करता, कुछ करो इसको, भला कर लो इसको, थोड़ा रास्ता बता दो। तो फकीर ने बोला ठीक है, उस बच्चे से बातचीत किया, बोला देखो बेटे मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे थोड़ा हेल्प कर दोगे? अब यंग बच्चा था, बोले ठीक है बाबा जी हेल्प करूंगा। बोले क्या है? कि मैं रोज सुबह ना 5:30 बजे उठ करके मंदिर जाता हूं, मेरे साथ चलोगे? बोले चलूंगा। तो हेल्प करने के लिए, मंदिर जाने के उद्देश्य से नहीं, किसी को हेल्प करने के लिए सुबह 5:30 बजे बाबा जी ने उसको उठाया और साथ चल पड़े। मंदिर जाते थे ये, नहा धो करके जाते थे, अपना प्रार्थना वगैरह करते थे, वापस आते थे, लड़का जाता था घूम फिर के आता था। ऐसे रोज होने लगा, धीरे 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 बच्चे को बाबा के संगत में पढ़ते पढ़ते तो अब वो भी मंदिर में माथा टेकने लगा, बैठने लगा। तो बाबा जी ने उसको कुछ प्रार्थना सिखा दी, मंत्र सिखा दी, 1-2 महीने की दोस्ती हो गई। तो बच्चा अब रोज मंदिर जाता है बाबा के साथ, अपनी मर्जी से जाता है, मजा आता है, प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है, थोड़े मेडिटेशन में भी बैठ जाता है, जितने देर तक बाबा जी बैठते हैं वापस आते हैं। 1-2 महीने बीत गया, प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट हुआ। एक दिन बच्चे ने बोला बाबा जी को, बाबा जी देखिए गर्मी का मौसम था, लोग इधर उधर सोए पड़े हुए हैं, कोई घूम रहा है, कोई गमछा पहन के गांव की जगह है, कोई ब्रश कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई चाय के दुकान में चाय की चुस्की ले रहा है, सब आ रहे हैं वापस में। बोले बाबा जी देखिए लोग कितने पापी हैं। बोले क्यों? देखो सुबह उठ के नहा धो के भगवान का नाम लेना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, देखो कितने पापी हैं, कोई घूम रहा है, सोए पड़ा है, ब्रश कर रहा है। बाबा जी ने कहा पता नहीं लोग पापी है कि नहीं, पर ये जरूर है कि 2 महीने से मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है। ले क्या पाप किया? कि तुम्हें मैंने पूजा ये भक्ति में जोड़ दिया है। तुम्हारी भक्ति ऐसी हुई कि तुम्हारा ईगो बहुत बढ़ चुका है। मैंने तो सोचा था तुम अच्छा बनोगे, पर तुम इतना ईगोइस्टिक बन चुके हो, तुम तो दुनिया पापी लगता है। देवियों सज्जनों, अच्छे काम भी हमें बर्बाद कर देते हैं। अगर ख्याल नहीं रखा अंदर का, तो दुनिया आपको पापी लगने लगेंगे, दुनिया आपको बेकार लगने लगेगा, सारे आपको मूर्ख लगने लगेंगे, खुद ही सब अच्छे लगने लगोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि एटीट्यूड के साथ हम खड़े। आगे आगे की बात आगे करेंगे, ये कंटिन्यूटी में रहेगा। ओम शांति, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।